الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں باب قائم کیا باب الخوف. میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اس میں انہوں نے ایک آیت بیان فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. اس باب کی میں نے چند آیتیں اور حدیث پڑھی ہے. اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آواز، جہنم کی آواز، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کی آواز، اس کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں لہم فیہا زفیر و شہیق. جہنم میں جہنمیوں کے لیے چیخو پکار ہوگی. زفیر کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے سخت آواز، دوسرا معنی ہے گدھے کی آواز، گدھے کی جو شروع کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی زفیر کہتے ہیں، سانس کا باہر نکلنا، اندر نہ جانا، یہ جہنمیوں کی حالات. اور شہیق کہتے ہیں سلو آواز، आदमी जब मरने की एंड पर होता है तो कैसे स्लो आवाज, या गधे की इंतहाई आवाज, या फिर सांस का अंदर ही अंदर बाहर ही बाहर, इस किस्म की हालात जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमियों की होगी। हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जहन्नम से हम सब की सारी उम्मत मुसलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसी का जिक्र करते हुए इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीहि व अबी। अल्लाह जल्ला शानहु का इरशाद है, उस दिन आदमी अपने भाई से भी दूर भागेगा, अपनी माँ उस उनसे भी दूर भागेगा, अपने बाप से भी दूर भागेगा, अपनी बीवी को तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, और अपने बेटे से हर शख्स से, बल्कि हर आदमी अपनी फिक्र में होगा। कयामत का दिन ऐसा खतरनाक होगा कि एक हर आदमी अपनी फिक्र में होगा, और जो दूसरे से बेनियाज बेपरवाह कर देगी, ऐसी हालत होगी। ये तो मैदान महशर की बात है, कयामत का दिन उस दिन की बात है, हशर कब्र से निकलने के बाद हर शख्स अपनी अपनी फिक्र में नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। एवरीवन विल बी इन डिफिकल्ट पोजीशन, एंड परेशानी की कैफियत क्या होगी, इतनी खतरनाक परेशानी कि दुनिया में इतना करीबी रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, औलाद और माँ बाप का रिश्ता, जिस पर आदमी दुनिया में अपनी जान दे देता है, माँ बाप पर औलाद पर जान दे देता है, उनको देखकर भी इंसान भागेगा कयामत के दिन। ये मैदान महशर की बात कर रहा हूं, जहन्नम की नहीं, जहन्नम की तो खतरनाक है ही, लेकिन मैदान महशर में भी अल्लाह कह रहा, कुरान में कह रहा है कि वो उस दिन अपने करीबी रिश्तेदार, बल्कि बिल्कुल खून वाले रिश्तेदार, उनको भी देखकर भागेगा कि कहीं मुझे कुछ देना ना पड़े, कहीं मुझे नेकी देना ना पड़े। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंडिविजुअली तौर पर हर इंसान को अपना प्रिपरेशन और तैयारी करने का आज हुक्म दिया, ताकि कयामत के दिन तुम्हें किसी से भीख मांगना न पड़े, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए सफिशिएंट हो जाए। इसलिए अल्लाह आगे कह रहे, लिकुल्लि इमरीन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन यानी मैदान महशर में हर एक का हाल उसको दूसरे के हाल से लापरवाह कर देगा। अगर आज कोई बीमार है मां, तो बेटा परेशान होता है, बाप परेशान है तो बेटा ज्यादा परेशान होता है, ये औलाद मुसीबत में है तो माँ बाप परेशान होते हैं, भाई को कुछ हो गया तो भाई परेशान होता है, बहन को कुछ हो गया तो भाई परेशान होता है, लेकिन कयामत की इतनी बड़ी परेशानी दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उस दिन भी कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, ऐसी रिश्तेदारी भी कयामत के दिन एक दूसरे से भूल जाएंगे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि कयामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहु लोगों को जब पैदा करेंगे ऐसी सूरत में लोगों के पैर में कोई शूज नहीं होगा, कोई सैंडल चप्पल कुछ भी नहीं होगा, और बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, और विदाउट सर्कमसाइज यानी बगैर खतना के मर्द पैदा होगा, यानी वही बच्चा पिता, यानी यही समझ लो जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो ये तीनों कंडीशन से उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता, उसके पैर में कोई शूज नहीं होता, और वो बगैर खतना के होता है, और उसके मुंह पर पसीने की लगाम लगी हुई होगी। ये तो उम्मुल मोमिनीन भी उम्मुल मोमिनीन थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बदन पर कपड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? शर्म हया नहीं होगी। क्या मतलब? हर एक दूसरे को देखेगा, मर्द औरत को नंगा देखेंगे, औरत मर्द को नंगा देखेंगे। अंदाजा करो, आज तो दुनिया में ऐसा ही होता है, जब नंगे रास्ते पर नजर नहीं आते तो फोन में देखते हैं। हालत उस दिन तो फिर सारी कौम, सारी दुनिया की औरतें, सारी दुनिया के मर्द नंगे होंगे, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं, तो क्या हालत होगी? शर्म आया नहीं होगी, कहां छुपेंगे? छुपने की कोई जगह नहीं, न दीवार, न वॉल, न घर, न मकान, न दरख्त, न खड्डा, नीचे भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और पसीना होते होते यहां तक पहुंच जाएगा, क्या होगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रिवायत बुखारी में भी है, उसने फरमाया अरे तू देखने की बात कर रही है, उस दिन लोगों का मामला ही इतना सख्त होगा, यानी लोग इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में होंगे कि कोई किसी को देखने की फुर्सत ही किसी को नहीं देख सकेगा। बिल्डिंग में आग लग जाए तो कोई किसी को देखता है कि भागता है? भागता है ना अपने आप को बचाने के लिए। ये हालत होगी, ये तो कुछ भी नहीं, कयामत की हालत ऐसी होगी। तो भाई और बहन तो दूर की बात है, क्योंकि वह हालत ही इतनी खतरनाक होगी कि हर आदमी परेशान होगा। बल्कि रिवायत में आता है कि अगर हिसाब किताब में किसी की कोई नेकी कम हो गई तो अल्लाह कहेंगे जाओ तलाश करके लाओ, एक नेकी तेरी जरूरत है, कहीं से मिल जाए तो कामयाब है, वरना तो सॉरी जहन्नम में जाना पड़ेगा एक नेकी की कमी की वजह से। आज एक नेकी का कोई वैल्यू नहीं है, कयामत के दिन एक एक नेकी का वैल्यू होगा। जैसे आज हमारे यंगस्टर्स को पाउंड का वैल्यू नहीं है, अगर ये पाकिस्तान यही पाउंड लेकर चले जाए तो उनको पाउंड का वैल्यू समझ में आता है। इसी तरह कब्र में उतरने के बाद एक एक नेकी का वैल्यू होगा। काश के मैं एक बार सुभान अल्लाह पढ़ लेता कि मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिल जाता, काश के मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता, काश के मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता कि तमलान मीजान, कयामत में मेरा स्केल भर जाता। एक एक नेकी हदीस में, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, कि उससे पहाड़ों के बराबर सवाब, जमीन से लेकर आसमान तक का सवाब, ऐसा ऐसा सवाब उसको कयामत के दिन मिलेगा। लेकिन वहां एक एक नेकी की वैल्यू होगी। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी या रब्बी लकल हम्द कमा यम बगीली जलाल वजही का वली अजीम सुल्तानिक, अल्लाह की तारीफ के कलेमात है, फरिश्ते उसको सवाब लिखना चाहते लेकिन कितना लिखना पता ही नहीं। इस जुमले पर तो फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं कितना लिखा, फरमा इसका सवाब इतना है कि तुम लिख नहीं सकते, वही जो पढ़ा वही लिख दो, मैं उसको सवाब दूंगा। या रब्बी लकल हम्द, जो आम तौर पर मैं अपनी दुआ के शुरू में पढ़ा करता हूँ, या रब्बी लकल हम्द कमा यम बगी लि जलाली वजही का वली अजीमी सुल्तानी। इसीलिए मरने के बाद नेकी का वैल्यू होगा, काश के मैं ये कर लेता, मैं ये भी कर लेता, मैं ये भी कर लेता, मैं ये भी कर लेता, वैल्यू होता। इसीलिए जन्नत में जाने वालों को, जन्नत में जाने वाले को किस चीज की जरूरत है? जन्नत में जाने वाले को सब कुछ मिल गया जी, उसको किसी चीज की हसरत नहीं है, किसी चीज की हसरत रिग्रेट नहीं है उसको। लेकिन एक चीज का जन्नतियों को भी रिग्रेट होगा, वो क्या है? दुनिया में वो औकात, वो टाइम दैट ही स्पेंड विदाउट जिक्र ऑफ अल्लाह, काश के उसमें मैं जिक्र कर लेता, काश के उसमें मैं जिक्र कर लेता, तो आज मेरे लिए जन्नत में और बड़ा दर्जा होता, और बड़ा, काश के। हालांकि जन्नत में सब कुछ है, फिर भी उसको, जन्नती को रिग्रेट होगा उन टाइमों का जिसको हमने वैसे ही स्पेंड कर दिया, उसमें, उस बैठक में, उस सफर में, उस जगह में, कहीं आपने जिक्र ही नहीं किया अल्लाह का, उस जगह का, उस मजलिस का, उस ट्रेवलिंग का, उस वक्त का, आदमी को रिग्रेट होगा, काश के मैंने किया। इतनी बड़ी दौलत है कि जिक्र, इतनी बड़ी दौलत है कि आदमी ट्रैवलिंग करता हो अल्लाह का जिक्र करता हुआ, तो उस जमीन, एक जमीन दूसरी पर और एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पर फख्र करते हैं कि हमारे पास एक आदमी गुजरा है अल्लाह का जिक्र करता, जमीन पहाड़ भी फख्र करता है। तो नेकी का वैल्यू तो कयामत के दिन होगा, जब रोजे जजा होगा, डे ऑफ रेकनिंग नहीं, हाँ डे ऑफ रेकनिंग होगा, जब हिसाब किताब होगा, तो उस वक्त पता चलेगा काश के मैं दो चार और गुड डीड्स कर लेता, राइचस डीड कर लेता, तो आज मेरे लिए बहुत फायदेमंद होता। इसलिए वो काम करने चाहिए जो मेजान में सबसे हैवी हो, मेजान में सबसे भारी हो, वो नेकी करे जो तराजू में सबसे भारी हो। कौन सी नेकी है? इमाम बुखारी ने आखिरी हदीस इसी को बयान किया है जी, वो क्या है? वो दो जुमले ऐसे हैं कि तुम उसको कहो तो जबान पर हल्के हैं, जबान पर वेरी इजी है, लेकिन तराजू में भारी है, तराजू उस भर जाएगा, भारी है, हैवी है, वो पढ़ा करो ताकि तुम्हारा तराजू भारी हो जाए। एक तो तराजू में कॉटन वूल रखे और एक तरफ ईंट रखे, दोनों अलग है, कॉटन वुल तो इतना बहुत रखना पड़ेगा जिसका कोई वजन नहीं, और एक तरफ भारी रख दिया ईंट, वजनी है, आमाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आमाल जो हदीसों में है, एक तो है जिसका सवाब बहुत ज्यादा और एक है जो भारी है बहुत ज्यादा, तो भारी तो थोड़ा भी चल जाएगा, तराजू को झुका देगा। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं है जबान पर बहुत हल्के, तराजू में भारी और अल्लाह को महबूब, तीन चीजें, वो पढ़ा करो कसरत से चलते फिरते, जबान उससे जारी हो हर वक्त, इतने आसान है, खुद नबी की जबानी है जी, खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीजान हबीबताना इलर रहमान सुभान अल्लाह व बिहम्दी سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. یعنی پڑھ لیا, ہمیں تو اس کا احساس نہیں, ہم نے پڑھ لیا, لیکن قیامت میں یہ جب آئے گا نا تو بہت بھاری ہوگا. ثقیل, ثقیل کے معنی بھاری, ثقیل اتان فی المیزان, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیوی دا اسکیل آن دا ڈے آف قیامت. اور دوز ہو ریسائٹ دس سینٹنس آلویز صبح شام, شیطان پڑھنے نہیں دیتا نا, شیطان بلا دیتا ہے, شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا بالکل نہیں, چاہتے بھی ہے بھول گئے, ارے پڑھنا شروع کیا پھر کام میں مشغول ہو گئے. صبر میں بھی کچھ نہ کچھ بس بھول گیا, پھر بعد میں کاسک میں پڑھ لیتا, لیکن شیطان پڑھنے دیتا ہی نہیں, کیوں اس کا میزان بھاری ہو جائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آدمی پڑھنے والا اس جملے کا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, is going to be beloved to Allah, and shaitan don't want that, become friend of Allah, become my friend, na'uz billah. Samjhe mere bhai, to kuch amal aise hain jo sawab mein bahut zyada hai aur kuch amal aise hain jo wazan mein bahut bhari hai, hame wo amal karne chahiye. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اخلاق قیامت کے دن وزن میں ساری نیکیوں سے بھاری ہوں گے. اچھی اخلاق, اخلاق بہت سارے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن نیکی کا ویلیو کب کا پتہ چلے گا, کاش کہ میری ایک نیکی ہوتی تو مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے ایسے اعمال کرو کہ جو اس کو قیامت کے دن کام آئے. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ آدمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا اس کا نیکی کا وزن کم اور گناہ کا زیادہ, جا جہنم میں, لیکن جہنم میں جانے سے پہلے کا ایک اور بات رہ گئی اس کی, کیا کیا, ایک بیگ لا کر اس میں رکھ دیا نیکی کے پرنے میں, ایسی رکھ دی. سبحان اللہ, اب یہ جھک گیا کہ جاؤ جنت میں, فیصلہ ہوا جہنم کا, ایک بیگ رکھی, فیصلہ ہو گیا جنت کا. ملا نے کاری نے لکھا اس کو مرکات مشکات کی شرح میں, کیوں, اس لیے کہ ایک دن گیا تھا قبرستان, تھیلی بھر کر اس نے تین بار منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, مٹی کو تین بار دعا پڑھ کر ڈالا, کسی مرحوم کی قبر کے اوپر دفن کرنے کے لیے گیا, لیکن اخلاص اتنا تھا کہ وہ اخلاص اتنا کام آ گیا. اللہ کہہ رہے ہیں اس تھیلی میں تیری وہ مٹی ہے جو تو نے اخلاص سے ڈالی تھی, اور اسی پر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے. بعض مرتبہ اخلاص کام کر جاتا ہے, ایک ایک نیکی پر اخلاص ہی کام کر جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں, بطاقہ نہیں بطاقہ کہتے ہیں اس کو, یعنی پرچی, چھوٹی سی پرچی ہے ایسے, اور اس کے ترازو میں ڈال دی, حالانکہ سارے گناہ ہیں, گناہ ہی گناہ ہے, ایک پرچی ڈال دی اللہ پاک جا جنت میں. اللہ یہ کیا ہے, اور تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نہیں, جانا تو چاہیے کدھر, جہنم میں, لیکن تو نے اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, یا پھر ایک مرتبہ تو نے اللہ کہا تھا اخلاص سے, بس وہی اس پرچی میں تیرے جنت کا فیصلہ ہو گیا. ایک حدیث میں درود شریف ہے ڈالا, اس کے لیے جنت کا فیصلہ. اخلاص والے اعمال, قبولیت والے اعمال, بھاری اعمال, اخلاق حسنہ, میرے نبی کی ساری چیزیں اعلیٰ تھی, सारी सारी नमाजें रोजे सारी आला थी, लेकिन अल्लाह ने कुरान में अखलाक को कहा वइन्नक लअला खुलुकिन अजीम, आप तो सबसे बड़े थे, नहीं सबसे बड़े, बड़े अखलाक वाले, कितने बड़े पता है ना। वो एक यहूदी आया किसके पास, हजरत अबू हुरैरा के पास रजी अल्लाह का, वो मुझे तुम्हारा कुरान कह रहा है खुलुकिन अजीम, नबी बहुत बड़े अखलाक वाले, समझाओ मुझे कितने बड़े अखलाक, तो मुझे नहीं पता। हजरत अली के पास जाओ, हजरत फातिमा के पास जाओ, ना हजरत बिलाल के पास जाओ, तो हजरत बिलाल ने कहा मुझे नहीं पता, कहा हजरत फातिमा के पास जाओ वो समझाएगी, बेटी है, बेटी को पता है खुलुकिन अजीम कैसे थे। हजरत फातिमा कह रही मुझे नहीं पता, जाओ हजरत अली के पास, तो हजरत अली के पास गए, तो हजरत अली कहते आओ मैं तुझे समझाऊं खुलुकिन अजीम कैसा था। कहा तूने दुनिया देखी है, हजरत अली पूछ रहे दुनिया देखी है, कहा यार नहीं देख, पूरी नहीं देखी। कहा उसकी कोई एन नजर आती है, कहा नहीं कहीं नहीं, इधर भी नहीं इधर भी, नो साउथ नो नॉर्थ नॉट ईस्ट नॉट वेस्ट, कहीं भी नहीं। दुनिया में कैसे, समुंदर कितने बड़े बड़े, दुनिया कितनी बड़ी है, देखी है नहीं देखी। जब तूने दुनिया नहीं देखी जो इतनी बड़ी है, तो घूम नहीं सका दुनिया में, जिसको अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान कितना है भाई, थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा। इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह कलील कह रहा है, तो मैं तुझे, तू दुनिया ना देख सका, ना मैं देख सका, ना तू देख सका, ना मैं दुनिया को समझा सकता हूं जो बिल्कुल कलील है, तो नबी के अखलाक अजीम अल्लाह ने कहा है खुलुकिन अजीम, उसको मैं कैसे समझा सकता हूं, आई बात समझ, कैसे समझा सकता हूं। तो कयामत के दिन, हाँ एक सुबहान अल्लाह पढ़े तो जमीन से लेकर आसमान तक, हदीस में आधा तराजू भर जाएगा, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो पूरा तमलान दो तराजू भर जाए, इतना ये चीज है। लेकिन नेकी एक घट गई फैसला, और जिसका दोनों बराबर उसका ही मसला है, न जन्नत में न जन्म में, दरमियान में जाए नहीं, उधर जन्नत भी नजर आती है जहन्नम भी नजर आती है, दरमियान में रहा, आराफ जिसको कहते हैं, वना अदा सहाबुल आराफ कुरान में। इसलिए तराजू सबका होगा, वनदाउल मवाजीन अल किस्त लियोम अल कियामा, हम वजन करेंगे सबके अमाल का कयामत के लिए। फला तुजलम नफ्सुन शैया, किसी पर जुल्म नहीं होगा, तुम अपने अमाल लेकर आओ और रखो, एक रजिस्टर नहीं, हम तो इतने अमाल कर रहे हैं कि एक एक आदमी के 99 रजिस्टर होंगे, और रजिस्टर भी इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि जहां तक उसकी आंखों की इंतिया है, और तराजू कितना बड़ा होगा, अब वो बड़े हुए होंगे, ऐसे भी होंगे जिनके रजिस्टरों में गुनाह ही नहीं, नेकियां ही नेकियां, ऐसे भी होंगे जिनके रजिस्टर में गुना ही गुना, नहीं किया बिल्कुल नहीं, ये सब खोल के दिखाई जाएगा। बोल इसमें कोई गलती की है कि रामन कातिबीन ने, वो तो क्या कुरान में कह रहे हैं कि रामन कातिबीन या लमून, वो जानते हैं मा तफालून, तू क्या करता। अब उस रजिस्टर में जो है लिखा हुआ है कुरान में, क्या एक सूरह काफ में है, मा यल फिजू लफ्ज लफ्ज, एक लफ्ज क्या कहते हैं, मा यल फिजू, जो भी लफ्ज निकालता है, चाय लफ्ज है, सोना लफ्ज है, जो भी लफ्ज निकाले इल्ला मिन कौलिन, जबान से, लदई रकीबुन अतीन, उसमें लिखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो उसमें लिखा है। तो जबान का लफ्ज जिसको ये फेंकता है जबान से, लफ्ज के माना समथिंग टू थ्रो आउट, अटरिंग फ्रॉम द माउथ, बहुत से लोग तो क्या है सिर्फ बकवास ही करते, बहुत सारे लोगों को तो बस पेन ही चलती रहती है, किसी की गीबत में, फुला में फुला में। अब तो पेन की जरूरत नहीं है, ये अंगूठे चलते हैं। किस लिए? उंगलियां चलती है मैसेजेस के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फुला के लिए, फुला के लिए। आसान कर दिया, पेन भी पकड़ने की जरूरत नहीं। अब उससे भी आसान, बोल के भेजते हैं, है ना। अब तो बहुत आसान, ये भी तो फेंक रहा है ना थ्रू मैसेज। ये कितने सारे, वो सारी बातें नाम आमाल में लिखी हुई है। कुरान क्या कहता है? वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा कहते हैं बस राय के दाने, समझ लो उससे भी कम। इतना भी अगर तुमने जबान से, हाथ से, पेन से जो भी किया होगा वो भी लिखा हुआ होगा, नेकी भी और बुराई। और कुरान में सूरतुल कहफ तो आप हर जुमा को पढ़ते हैं, उसमें है वकालू, वो लोग कहेंगे कयामत के दिन मा लिहादर रसूल मा लिहादल किताब, इस नाम माल को क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो न छोटी कोई चीज छोड़ी है न बड़ी, सब कुछ उसमें लिख दिया है। हम तो भूल गए ना यार, हमें तो कल क्या खाया वो भी याद नहीं, कल क्या खाया वो भी याद नहीं है, लास्ट वीक हमने थर्सडे को क्या खाया था भूल गए, लेकिन उसमें सब लिखा हुआ है। वो मेमोरी दोबारा आ जाएगी कयामत के दिन, किया है ना कि नहीं है, वो इनकार नहीं कर सकता। इनकार करेगा ना तो भी मसला है, इनकार कर ही नहीं सकता। अगर इनकार करे तो भी मसला है, क्यों? अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। चल तेरी जबान तो मना कर रही है, तेरा बदन तो बोलेगा भी, तो उसका हाथ बोलेगा, उसका पैर बोलेगा। समझ में बात आ रही है? तो इनकार भी नहीं कर सकते, इकरार ही करना पड़ेगा। कभी समझेगा लोग, यहां कोई नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा तो अल्लाह कहेंगे यहां कोई नहीं है, लेकिन तेरा आजा खुद गवाही दे देंगे, किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे और आपके अमाल को सच करने के लिए अल्लाह को न मुनकर नकीर की जरूरत, न रजिस्टर की जरूरत, उसको सब पता है। तकदीर में, लोहे महफूज में सब लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं और आप कयामत के दिन इनकार करेंगे, तो मेरे इनकार को हुज्जत बनाने के लिए, इनकार पर हुज्जत बनाने के लिए वो भूखे सामने लाए जाएगी, दिखाया जाएगा, फिर भी इनकार करेगा। अल्लाह पूछेगा मेरे फरिश्तों ने झूठ तो नहीं लिखा इसमें, तो भी इनकार करेगा कि नहीं नहीं ये गलत है। जैसे आपने पढ़ा है कि कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा लोगों से, नबी ने मैसेज दिया था, कहेंगे नहीं हमारे पास कोई नबी आया ही नहीं है, तो फिर अल्लाह नबी से पूछेगा हमने कहा है इनको दलील लाओ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को दलील बनाया जाएगा, ये उम्मत फिर उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। इसलिए कयामत के दिन कौम के कौम झूठ बोलेगी, हर आदमी झूठ बोलेगा, तो उनके लिए हुज्जत बनाया जाएगा उस रजिस्टर को। रजिस्टर तो भी ना माने तो फिर उनकी आजाही बोलेंगे, फिर कैसे आदमी का छुटकारा होगा? देयर इज नो वे टू रिलीज फ्रॉम अल्लाह। तो बात कर रहा था मैं कयामत के दिन वैल्यू एक एक नेकी का होगा, तो फिर अल्लाह कहेगा जाओ तेरे माँ बाप है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, उससे ले आओ। जाएगा माँ के पास, नहीं मेरे को जरूरत, तेरे को कहा आई नहीं, मैं ओन नेकी हम लोग गिव यू टुडे, द मदर वॉज डाइंग फॉर द सन एंड डॉटर टुडे, लुक एट इट। वो बाप मना करेगा, ये हकीकत मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। वो भाई मना कर, बल्कि भागेंगे, याया भागो, वो जैसे कहते दरवाजा खोलना ही नहीं है, चुपचाप देख लिया कौन है जी, खोलना ही नहीं, जाना ही नहीं रास्ते, भटके तो मुझे मांगे ना, भागेंगे दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। और मियां भागेगा बीवी से, बल भाई, है ना। और बीवी भागेगी यहां से, अरे इतना खिलाया फिर भी नहीं देता ये तो, है ना। 50-60 साल तक उसको लंच भी खिलाया और उसको सपा भी खिलाया, बिरयानी भी खिलाई और अच्छा अच्छा खाना खिलाया, फिर भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा वो दिन? बात सुन रही है? आदमी सोचे तो सही कि अल्लाह क्या कह रहा है। वो दिन ही बड़ा खतरनाक होगा, जैसे आयशा की रिवायत तो लग जा ना यार, जा कहीं से भी तलाश करके ले आ, वो बेचारा इधर उधर। कयामत का दिन है, खतरनाक दिन है। एक नेकी कौन देगा? हर आदमी अपनी कामयाबी को तलाश करेगा, मैं जहन्नम से बच जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं, जहन्नम से बच जाऊं। इतने में एक आदमी होगा, वो भाई क्या परेशानी है यार, एक नेकी चाहिए, ले जा मेरे पास एक ही है, सारे गुनाह है, वैसे भी मैं तो जाने वाला ही हूं, है ना, 99 to 100 पूरा कर लिया, जाकर ले जा, ले जा, जाओ ले जा, एक ही है मेरे पास, तेरी तेरा तो काम बन जाए। अब दिल गुर्दे का काम है, एक नेकी देना भी। ओ भाई मैं यहां बैठा हूं, मैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहूं, कोई मुश्किल है? लेकिन कयामत की तो उसी सुभान अल्लाह एक नेकी के लिए ये कहां कहां घूम रहा है। अंदाजा तो करो कि कयामत के दिन ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया दुनिया में, कलमा पड़ा है बस, कभी नहीं, ऐसे भी लोग हैं। हां ऐसे लोग भी हैं, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा, हम तो एक कुएं के मेंढक की तरह, हमें क्या पता। लेकिन दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी भर एक नमाज नहीं पढ़ी जी, ऐसे भी है जो जिंदगी भर जब से बालिग बस नापाक ही नापाक रहते हैं, ऐसे भी है जिनकी जिंदगियां गुनाहों में गुजरती है रात दिन, शराब जीना, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी होंगे कि जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, कोई गुनाह नहीं हुआ, तोबा तोबा करके गए हैं, तोबा से सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, ऐसे भी होंगे। हाँ अब ये ले जा भाई, एक नेकी ले जा, मैं तो वैसे भी मेरे तो 99 रजिस्टर बड़े हुए हैं गुनाहों से, जन्म जाना है मुझे। अब ये उस नेकी लेकर जाता है अल्लाह के पास और अल्लाह उसके लिए फैसला करता है, जा आज मैदान महशर में इतना बड़ा सखी कौन बन गया, अल्लाह खुद कह रहा है आज मैदान महशर में इतना बड़ा सखी कौन बन गया कि जो नेकी देने पर तैयार हो जाए, पैसे तो देने नहीं, पैनी वैनी नेकी है, जहां हर आदमी को जरूरत है, जहन्नम आगे नजर आ रही है, उसकी चीख पुकार, उसकी गर्मी कहां कहां तक दूर जाएगी। भाई जहन्नम में जलना कोई आसान है? अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, खतरनाक है वो जगह, बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। हाँ आज हम दुनिया में इतने मशगूल हैं कि हमें जहन्नम की कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, इसलिए हर फजर के बाद, हर मगरिब के बाद एक दुआ जरूर पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। दो तीन दुआएं लाजिमी पढ़ो फजर के बाद, एक तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, उसको 7 बार फजर बाद, 7 बार मगरिब के बाद, अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत करना। हदीस में आता है जो आदमी पढ़ लेता है सुबह शाम तक में मौत आ गई, जहन्नम से उसकी हिफाजत करेंगे। और शाम में पढ़ लिया मौत आ गई तो जहन्नम से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। दूसरी दुआ रदीतु बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। रदी तो बिल्ला ही रब, मैं राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, वो रब्बा है, मेरा रब है वो। बबिल इस्लाम दीना, मैं राजी हूं कि इस्लाम मेरा मजहब है, इस्लाम मेरा मजहब है, मैं मुसलमान। वबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, मैं राजी हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है, तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। अगर 3 बार सुबह पढ़ ले तो पूरा दिन अल्लाह उसे राजी है, शाम में पल्ले पूरी रात राजी है, और अगर मर गया तो कब्र में सवाल आसान है। यही तीन सवाल होंगे ना, मर रब्बो का रजी तो बिल्लाही, रब्बो का कौन है, अल्लाह मेरा रब है, और तेरा मजहब क्या है, वह बिल इस्लाम दीना, इस्लाम मेरा मजहब है, और ये कौन है, आदर रजुल वह भी मोहम्मद सलास नबिया, ये नबी है। तीनों सवाल आसान, जो पढ़ता रहेगा कब्र की हालत भी ठीक हो, आई बात समझ में। और तीसरी बात, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कभी ना भूलो हर नमाज के बाद पढ़ने का, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादत, ये अपनी इबादत को बेहतर बनाने के लिए। और चौथी बात हदीस में है कि जब बंदा सुबह में तीन बार कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व औधु बिका मिनन नार, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं जन्नत का और पना चाहता हूं जहन्नम से, तीन बार कह दे तो जन्नत कहती है अल्लाह से, और एक रिवायत में है मिश्कात की हदीस है, जन्नत खुद कहती है अल्लाह से, या जन्नत के हूर और गिलमान कहते हैं अल्लाह से, ए अल्लाह ये जन्नत मांग रहा है तो उसको जन्नत अता फरमा, और जहन्नम कहती है अल्लाह से, या जहन्नम के फरिश्ते जो खड़े हैं दारोगा वो कहते हैं अल्लाह से, ए अल्लाह जहन्नम से पना मांग रहा है, जहन्नम से इसकी हिफाजत फरमा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, अरबी में ये तो हदीस है, या तो फिर उर्दू में या अपनी जबान में, अल्लाह जन्नत नसीब, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, जन्नतुल अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमा। कोई मुश्किल है ये? कोई मुश्किल नहीं है। असल में शैतान नमाज के बाद मस्जिद में बैठने ही नहीं देता, भगा के ले जाता है, जल्दी भाग, फुना भी करना है, फुना काम भी करना है, फुना काम भी करना है। तो उसके लिए जन्नत का फैसला हो गया उस नेकी पर। आज सखावत करने वाला सखी जा उसको भी ले आ जिसने तुझे नेकी दी है, इस नेकी देने पर सखावत पर उसको भी जन्नत का फैसला है, दोनों जन्नत में जाएंगे। तो कयामत के दिन क्या होगा, अल्लाह कह रहे या युहन्ना सुत्तको रब्बकुम, दूसरी आयत में लोगो अपने परवरदिगार से डरो, कयामत का जलजला शयउन अजीम बहुत खतरनाक है, जलजला आएगा ना कयामत का, सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो, खतरनाक है। कैसे खतरनाक, कैसे पता चलेगा, यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्द, जिस दिन तू उसको देखेगा, क्या देखेगा, कि दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएगी, अपनी फिक्र मेरा क्या होगा, अपने बच्चों को, और जितनी प्रेग्नेंट लेडी होगी वह तो दाओ कुल्लु जाति हमलिन हमलहा, जितनी हमल वाली होगी उनके हमल मिसकैरेज हो जाएंगे, ऐसा जलजला होगा, ऐसा खतरनाक। ये जलजले कुछ नहीं है, वो खतरनाक कयामत का जलजला होगा। हाँ, और क्या होगा, वतरन्नास सुकारा वमा हुम बेसुकारा, आपने देखा जो पिया हुआ ये रास्ते में जाते हैं ना, वो पी करके शराब, तो कैसे चलते हैं, जैसे भी गिर जाएंगे, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी आगे कभी पीछे, कभी गियर लगाते हैं कभी गियर खींचते हैं, समझ आई बात, ऐसा है। तो ये अल्लाह कह रहे हैं तू देखेगा लोगों को नशे की हालत में जैसे झूमते होंगे, वमाम बेसुकारा, हालांकि नशे की चीज पी नहीं है लेकिन हालत ऐसी हो जाएगी जैसे नशे में है। और आगे क्या कह रहे हैं लपा, बल्कि वो अल्लाह के सख्त अजाब में होंगे। साहबा कहते हैं नबी अकरम सासु सफर में थे, सफर में सबा के साथ, और इस आवाज को, इस आयत को अल्लाह के हबीब ने जोर से पढ़ा सबके सामने, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, से जोर से पढ़ा कि इस आयत को सुनकर सहाबा करीब आ गए। सभी दिन आएगा, सारे सहाबा दूर थे, सुनकर करीब आ गए अल्लाह के हबीब के, क्योंकि उनका था कौन, अल्लाह के हबीब ही थे, समझने समझाने और अपने तसल्ली के लिए कोई एक बाप का दर्जा था। फिर आपने सहाबा को खिताब करके फरमाया, इस आयत में जलजले से कयामत का जिक्र है, तुम जानते भी हो ये कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा। अल्लाह के हबीब ने सहाबा से फिर कहा, जब करीब आ गए तो सहाबा ने फौरन कहा, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, हम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करके फरमाएंगे कि लोगों को जहन्नम में जाने को भेजे, जहन्नम में जाओ, लोग कहां जाओ, जाओ जहन्नम में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाए भेजो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे जहन्नम में जाने के लिए सबको भेजो, मैं जहन्नम में जाने वाले कौन है, सारे लोग है ना, सारे लोग कयामत के दिन है, अब जहन्नम में जाने वाले कौन है, जाहिर बात है एक सवाल करें ना भाई। तो अल्लाह जल्ला शानु कहेंगे 1000 में, 1000 है उसमें से 999 जन्नत में जाओ, एक बच गया, 1000 है इसमें से 999 जन्नत में एक बच गया, तो हर 1000 में से एक बचेगा बाकी जन्नत में। अल्लाह हू अकबर, बहुत परेशानी का वक्त होगा जबकि सारे बच्चे खौफ से बूढ़े हो जाएंगे, हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने जब पढ़ा सहाबा डर गए, सहाबा कांपने लगे, डर गए, ये तो हम ऐसे जिगर वाले हैं कि इतने बयान सुनने के बाद डरते नहीं, इतने जिगर वाले, वो सहाबा का जिगर था कमजोर, फौरन डर जाते थे, हम तो गुनाह करके अपने जिगर को मजबूत कर लिया, काला कर लिया कि हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं। वो सहाबा जिनके दिल नूरानी थे, जिनके दिल नूर से भरे हुए थे, एक बात के ऊपर डर जाते थे, क्या होगा, क्या होगा हमारा। हालांकि वो तो वो लोग थे जिनका तो जिक्र अल्लाह पाक ने कहा रदी अल्लाह अनहुम व रदू अन, जिनको तो दुनिया में जन्नत की बशारत, वो नबी को देखने वाले, अरे ईमान लाए हुए, ईमान पर मौत आई और कुर्बानियां कैसी कैसी दी, फिर भी डरते थे। सहाबा सहम गए, फिर सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह हम में से फिर कौन बचेगा, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200 बच जाएंगे सारे जन्नत में। फरमाया मैं नबी हूं तुम्हें बता रहा हूं, बेफिक्र रहो। क्या फरमाया, बेफिक्र रहो, जहन्नम में जाने वाले याजूज माजूज में से 1000, उसमें से कितने जी 999, और तुम लोगों में से एक जहन्नम में जाएगा, इतने नहीं जाएंगे, फिक्र ना करो। आई मेरी बात समझ में, कि याजूज माजूज 1000 है तो उसमें से 999 जन्नम में जाएंगे और एक वो गुनेगार जाएगा उसके साथ। कमाल है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अब जलजला ये कब आएगा, ये जलजला कब आएगा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कयामत से पहले इस दुनिया में होगा, ये कयामत की आखिरी अलामत है। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, ये आखिरी अलामत। दूसरी जगह इजा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, कयामत कायम होने और लोगों को दोबारा जिंदा होने के बाद, बास क्या कहते हैं, जब लोग कब्र में चले जाएंगे फिर दोबारा तो पूरी जमीन हिलेगी, लोग निकल के भागेंगे उस वक्त। लेकिन सवाल होता है अगर ये कयामत के दिन है मरने के बाद, तो फिर कुरान में तो अभी शायद में क्या पढ़ा आपने, हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी और कयामत के दिन तो हमल नहीं होगा, प्रेगनेंसी का दर्ज आ गई। सवाल मेरा समझ में आता है इस आयत में, किधर से आ गई प्रेगनेंसी? सवाल होता है कि भाई हर हमल वाली मिसकैरेज कर देगी तो वो तो कयामत का दिन है, वो कैसे? तो फरमाया जिस हालत में औरतें मर्द मरते हैं उसी हालत में उठाए जाएंगे। अगर ये दुनिया में हमल वाली थी और हमल की हालत में मर गई तो उसी हालत में उठाई जाएगी। और इस जलजले से, इसी तरह दूध पिलाने वाली मां है, वो दूध पिलाती पिलाती इंतकाल कर गई तो इसी हालत में उठाया जाएगा, यानी वो इसी तरह बच्चे के साथ उठाई जाएगी, इसी तरह प्रेगनेंसी के साथ उठाई जाएगी और उस जलजले से खत्म हो जाए। ये बात। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, कयामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अल्लाह के सामने हर एक चीज का हिसाब होगा तो मेरा क्या होगा, उस खौफ की वजह से वो गुनाह से बचते हैं। लेकिन वो खौफ ही नहीं रहा, गुना से बचने का खौफ ही नहीं रहा। बाज़ मुफस्सिरीन जैसे अल्लामा कुर्तुबी रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बी ही, मकाम रब्बी ही दुनिया के एतबार से है कि दुनिया में मुसलमान डरते हैं कि अल्लाह ताला मेरे अमल को भी देख रहा है और मेरी जबान से निकलने वाली बात को भी सुन रहा है। इस खौफ से वो जबानी गुनाहों से भी अपने आप को बचाता है और फैली गुनाहों से भी, अमली गुनाहों से भी अपने आप को बचाता है। तो उनको मिलेगी दो जन्नत, जन्नतान। कैसी जन्नत मिलेगी? हजरत मुकातिल फरमाते हैं एक जन्नत का नाम है जन्नत आदर, दूसरी जन्नत का नाम है जन्नतुन नाईम। दो जन्नत मिलेगी, तफसीर मजहरी में इसको लिखा है। तो अल्लाह से दुआ करो, टाइम हो गया, अभी तो मैंने हदीस भी पढ़ी थी, खैर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला हम सब के हिसाब व किताब को आसान फरमा दे और बेहिसाब हम सबको क्या है, जन्नत में दाखिल फरमाए। आखिरत के फिक्र की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا قديم الإحسان يا كرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا كرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي والي وبارك وسلم تسليما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تو اس کو قبول فرما، بولنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں اس تیرے نبی کی باتوں کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، تیرے نبی کی پیاری باتوں کے صدقے اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے آل اور اولاد کی ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے گھروں میں رحمت اور مغفرت اور اللہ سکون کے فیصلے فرما، سکون عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، اے اللہ گندی اور غلط لائنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گندی اور غلط لائنوں سے ہماری حفاظت فرما، صراط مستقیم پر چلا دے، اے اللہ اچانک موت کا جھٹکا لگ جائے گا، اللہ قبر میں جا کے سو جائیں گے، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جاہو جلالی والے مال و دولت والے قبر میں جا کر سو گئے، الہ العالمین وہاں ان کا کوئی نہیں سوائے ان کے اعمال کے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی قبر کی فکر کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بہت سارے لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہو سب کو شفا عطا فرما، ہمارے حافظ احمد صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ उनके नवासे जाकिर का बेटा जो है वो कुरान करीम माशाल्लाह 15 सिपारे हिफ्ज कर चुका है, हॉस्पिटल में है हार्ट के प्रॉब्लम के लिए। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा, ऐ अल्लाह इस नौजवान को लाउल आलमीन, ऐ अल्लाह शिफाए कुल्ली आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा लाउल आलमीन, ऐ अल्लाह उसको मुकम्मल हाफिज कुरान बना दे, जल्दी घर आ जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए लाउल आलमीन। उनके माँ बाप को ऐ अल्लाह सब्र नसीब फरमा, ऐ अल्लाह ऐसे जितने भी लोग बीमार हैं जहाँ कहीं सब को शिफाए कुल्ली आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सारे मरहूमीन मरहूमात दुनिया से जाने वाले, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों में खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा, नूर से उनकी कब्रों को भर दे। लाउल आलमीन हम सब के लिए ऐ अल्लाह ज़िंदगी जब तक बाकी आमाल सालेहा की तौफीक नसीब फरमा, मौत आए लाउल आलमीन आखिरी कलमा हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, ऐ अल्लाह हर एक को अपने अपने वक्त पर ऐसी मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, भाई बहनों की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह लाउल आलमीन या अकरम अकरमीन पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बना, हाफिज़ कुरान बना, खादिम कुरान बना, ऐ अल्लाह आमिल कुरान बना, मुखलिस बना। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को लाउल आलमीन माँ बाप के और अल्लाह तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदारों में से बना दे। या अल्लाह जो मांगा था फरमा, न मांग सके अपने फजल व करम से, रहम व करम से था फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।